मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश लता जी के न रहने पर गमगीन है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, जो भी मेरी छोटी सी जिंदगी रही है और छोटा सा अनुभव का दायरा रहा है, कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस बीच में जब मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा परिपक्व हो गया हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे याद आ रहा हो जिसके निधन पर सच में राष्ट्र ने इतना बड़ा शोक मनाया हो। यह बात अलग है कि जो शोक दिवस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, छुट्टियां दी जा सकती हैं, लेकिन जन जन इतना बड़ा शोक मनाए मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। लता जी के नए रहने का दुख हर एक व्यक्ति को है, और यहां तक कि जो यूएनओ के महासचिव हैं उन तक ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूएनओ के सचिव की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर यूएनओ किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो मान करके चलिए कि वह व्यक्ति जिसे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वह महामानव है, वह विश्व मानव है, और लता जी ने अपने कद को इतना ऊंचा उठाया। यहां मैं लता जी के बारे में ही एक बात करने जा रहा हूं क्योंकि अभी यह अवसर है जब आप मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। आप कभी लता जी को रिकॉर्डिंग करते हुए देखिए, रिकॉर्डिंग कि वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, चैनल्स पर इस तरह के चित्र दिखाए जा रहे हैं, दृश्य दिखाए जा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, खड़ी हैं और रिकॉर्डिंग कर रही हैं। यहां तक कि आपको ऐसे दृश्य भी देखने को मिल जाएंगे जब वो बाकायदे स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं, मतलब स्टेज है सामने और वहां पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठी हुई है और सामने पूरे दर्शक वृंद बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, और वो अपना गीत सुना रही हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जिस बात की बात मैं यहां करने जा रहा हूं वह मिस हो जाएगी। चलिए, लता जी को आपने देख लिया स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग करते हुए भी। अब आप दूसरे सिंगर्स को देखिए और इन्हीं पोजीशंस में देखिए कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली जब आप टीवी चैनल्स वगैरह पर देखते हैं कि जब इंडियन आइडल्स वगैरह की बात होती है तो उसमें यंग जनरेशन के लोग आते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब इन दोनों की तुलना करके देखिए और सोचिए कि दोनों में आपको क्या फर्क दिखाई देता है, क्या सच में कोई अंतर दिखाई देता है। चलिए, ये तो मैं अभी के जनरेशन की बात कर रहा हूं और फिर लता जी की, और अभी के जनरेशन में तो बहुत सालों का अंतर आ गया है, मूल्यों में परिवर्तन आ जाते हैं, क्षमताओं में परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन उनके अपने ही जनरेशन वालों से तुलना करके देखिए। यहां खासकर जो मैं बात कहना चाह रहा हूं दोस्तों वो कुल मिलाकर यह है कि आप लता जी को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जब वो गीत गा रही हैं, अलग अलग भावों के उन्होंने गीत गाए हैं, जब वो गीत गा रही हैं तो उनके चेहरे पर बहुत हल्के से ही उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़े से गाल खींच जाएंगे, माथे पर थोड़ी सी त्योरियां चढ़ जाएंगी, आंखें थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनका हाथ, उनका शरीर, उनकी उंगलियां सब के सब ज्यों की त्यों स्थिर रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई साधना कर रही हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको उनमें शारीरिक रूप से कोई इस तरह के हाव भाव चेष्टाएं दिखाई नहीं देंगी जो गीत के अनुकूल होते हैं। और सच पूछिए तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है कि जब हम गीत गा रहे हों या जब हम बातचीत कर रहे हों तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो उसी के अनुकूल चेष्टाएं करने लगते हैं। यहां तक कि जब बातचीत हम करते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से हम अपने हाथ हिलाते हैं, हम अपनी गर्दनें हिलाते हैं, हमारी आंखें भी इधर उधर होती रहती हैं, तब जा करके हम अपनी बात को सहजता से सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। अदरवाइज हम असहज हो जाएंगे। अगर हमें कह दिया जाए कि आप बिल्कुल स्टैचू हो करके और भावना प्रधान बातें कहिए, और गीत गाना तो बाप रे, गीत कभी गले से नहीं गाया जाता। इनफैक्ट मैं तो समझता हूं कि जो गीत है वो आत्मा से गाए जाते हैं, और आप इतने अधिक भावना प्रधान बातों को, भावों को, विचारों को, स्थितियों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और इस अंदाज में पहुंचा रहे हैं कि वे युगों युगों तक पहुंचते रहेंगे, बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी चेष्टा के, एक सामान्य सरल और एकदम सहज तरीके से, क्या आपको नहीं लगता कि यह जादू है? अगर यह जादू नहीं है तो फिर जादू क्या है? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अद्भुत जादू है, यह मैजिक है। क्योंकि खासकर स्टेज पर बोलने का, भीड़ में को संबोधित करने का अवसर मुझे भी मिला है, इसीलिए मैं शायद ये बात कह पा रहा हूं कि वह एक जादू है, संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने संभव किया। यहां से मुझे एक बात समझ में आई, वो ये कि साधना जब अंतर्मुखी हो जाती है तो वो किसी को भी लता मंगेशकर बना देती है, और साधना को अंतर्मुखी कर पाना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और इसके लिए जो पहला स्टेज है, जो पहला चरण है, मुझे लगता है कि वह है सहजता। सहजता एक प्रकार से रचनात्मकता का प्रवेश द्वार है। अगर आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करनी है और उसे इतनी ऊंचाई तक ले जाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन सरल और सहज हो, तभी संभावनाएं बन सकती हैं। अदरवाइज दावे के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कठिन जरूर है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।